نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ما اصاب من مصیبت نہیں پہنچتی کوئی مصیبت. اب مصیبت سے اگر ہم یہاں پہ وہی جیسے میں نے آپ کو ترجمے میں لکھوایا کہ کوئی بھی چیز لیں, چاہے وہ خوشی ہے, غم ہے, اچھائی ہے, برائی ہے, نفع ہے, نقصان ہے, تو کتنی بھی کوئی بھی چیز ہے مگر وہ نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن کے ساتھ, اللہ کے ارادے سے. ایک تو بات سمجھ میں آ گئی یہاں پہ کہ ہر مصیبت, ہر آنے والی چیز انسان کی زندگی میں, ظاہر ہے ہر دم یا تو کوئی خوشی کی بات آتی ہے یا غم کی, یا کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی اچھی بری خبر, کوئی نہ کوئی انسان کو پہنچتی رہتی ہے, لائف ہے یہ. تو وہ فرما دیا کہ وہ ہر ایسی آنے والی چیز جو بھی انسان کو پہنچتی ہے, جو بھی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, وہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے, سب اللہ کے اذن سے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, جو اللہ پر پھر ایمان رکھتا ہو, يَهْدِ قَلْبَهُ, اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو رہنمائی عطا فرماتے ہیں. یعنی ایک تو پہلی بات جب ذہن میں یہ آ جائے کہ ہر نفع نقصان, ہر تکلیف, ہر پریشانی, ہر خوشی, ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے, تو ویسے ہی یہ انسان کے لیے قرار اور سکون کا باعث بن جاتی کہ اللہ کی طرف سے ہے, بس ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہوتا, یا ایمان کمزور ہوتا ہے, تو وہ اس وقت ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی مصیبت آ جائے تو وہ پھر اپنے آپ کو تھام نہیں پاتے, ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا, کبھی منہ سے الٹی سیدھی کوئی باتیں نکالتے ہیں, کبھی کچھ اور طرح کے اپنی حالت اظہار سے, کسی اور طرح سے اپنی غم کو شو کرتے ہیں, کہیں کوئی ٹکریں مارتا ہے, کہیں کوئی کپڑے پھاڑ لیتا ہے, کہیں کوئی غم یا پریشانی کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, کہیں کوئی ڈپریشن یا وہ جو فرسٹریشن اور اس طرح اس کی وجہ سے کوئی ذہنی مریض بن جاتا ہے, مینٹل ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں لوگوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدہ کمزور ہے کہ جو کچھ بھی آتا ہے نا وہ اللہ کے اذن سے ہے. انسان کہتا ہے یہ کیوں ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, میرے ساتھ ہی کیوں ہوا, یہ ایسا ہوا کیوں. بہت دفعہ انسان ایسی بات کرتا ہے نا, تو اس غم کے اندر انسان ایسا گھلتا ہے, ایسا اس کے غم کو مناتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میں منہ سے کیا بات کر, صدمے کو برداشت کرنے کی اس کے اندر قوت نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا, اس کے لیے یہ ایمان اتنی بڑی دولت بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کے دل کو رہنمائی دیتا ہے, اللہ تھام لیتا ہے اس کے دل کو, اس وقت وہ صحیح بات منہ سے پھر نکال پاتا ہے, اس وقت وہ نیگیٹو رویے سے بچ جاتا ہے, اس وقت کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی مصیبت جو بھی اس کے اوپر آئی ہے, اس کی وجہ سے وہ کوئی غلط بات, کوئی غلط جیسچر, کوئی غلط طریقے اپناتا نہیں ہے. وہ یہی کہتا ہے اس میں کوئی خیر ہی ہوگی, اس میں کوئی مصلحت ہی ہے, چاہے مجھے سمجھ آئے نہ آئے. دیکھیں وہ فوراً پھر راضی ہو جاتا ہے اللہ کی رضا میں, وہ کہتا ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے ہی ہے نا. یہاں تو یہ مان لیں کہ ہاں اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور मखलूकात या कोई और हस्तियां या कोई और हैं जो इंसान को नफा नुकसान पहुंचा सकती हैं, या तो ये मान ले। लेकिन मुसलमान का तो अकीदा ये नहीं, मुसलमान का तो अकीदा ये है कि अगर अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई फायदा नहीं दे सकता, चाहे सारी दुनिया मिल के जोर लगा ले, कोई मुझे नफा नहीं दे सकती। और मेरा अल्लाह मुझे नफा देना चाहे, सारी दुनिया जोर लगा ले, कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये है ना अकीदा हमारा, है ना? तो फिर ऐसा क्यों है कि जब कोई नुकसान हो तो इंसान फिर ये सोचे क्यों हुआ, कैसे हुआ, कि क्या हुआ मेरे साथ, मेरे साथ ही क्यों हुआ? तो ये क्यों हो गया, तो क्या तुम्हारा इल्म इतना है कि तुम्हें पता चले कि क्यों हो गया? क्या अब हम अल्लाह को बताएंगे कि क्यों उसने ऐसा किया और किस वजह से किया और मेरे साथ ही क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था? ये हम बताएंगे? हम कौन होते हैं बताने वाले? हम कैसे ये कह सकते हैं नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा होता तो फिर सही था, ये इस वक्त नहीं होना चाहिए था? वक्त क्या हम बताएंगे? तो जो मुश्किल इंसान के ऊपर आती है ना, हमने जब माना हुआ है कि अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह ताला के कंट्रोल में सारी कायनात है, जो कुछ वो कर रहा है उसके अंदर खैर है, क्योंकि वो हर चीज का इल्म रखता है और हर चीज उसकी तरफ से ही आती है, चाहे वो खैर की है चाहे वो शर की है, फिर तो फौरन सर झुका देना चाहिए, फिर तो कोई शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए, फिर तो कोई बेजारी और कोई इस तरह के इंसान डिप्रेशन ही में चला जाए और इस तरह के इंसान फिक्रों के अंदर ही घुलता चला जा रहा है और इंसान अंदर ही अंदर अपने आप को खत्म किए जा रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। जब उसको पता ही है अल्लाह की तरफ से है तो फिर क्या है, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए, जो मेरे रब का हुक्म, जैसे वो राजी है मेरा सर उसके आगे झुका हुआ। जब मुझे ये पता है कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर, तो जो मेरे ऊपर मुश्किल कोई आ गई या मेरे मुझे कोई चीज अच्छाई की मिल गई तो क्या अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर आई होगी? नहीं, वो अल्लाह के इज़्ज़त से ही आई है ना, ये मेरा ईमान है कि अल्लाह के इज़्ज़त से आई है ना। ये कितनी फिर बुरी बात है कि जो चीज अल्लाह के इज़्ज़त से आए, अल्लाह को मानने वाला उसके ऊपर गिले शिकवे करे, शिकायतें करे, उसके ऊपर मूड ऑफ करे, उसके ऊपर वो रोना धोना और अपना आपको घुलाना करे और उसको माने नहीं और उसके ऊपर रिटेलिएट करे, गो के जैसे के मुकाबला कर रहा हो, ये कैसे हो सकता है? तो जिसमें ईमान होता है ना, अच्छा ये बात मैं आपको बताऊं, अक्सर जब अस्पताल वगैरह में जाते हैं ना तो ये बात जरूर जहन में आती है, शुक्र भी दिल से निकलता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारे पास तू है, हमारे पास तू है तो हम मुतमईन है, हमें ये पता है कि जो कुछ भी है, ये बीमारी है या कुछ भी है, ये अल्लाह तेरी तरफ से है, तूने ये चाहा तो हुआ। और फिर हम तेरे ही आगे रोते हैं, तुझी से मांगते हैं, तुझी से गिड़गिड़ाते हैं, फरियादे करते हैं। लेकिन ये जो ईमान नहीं रखते ना, ये तो फकीर है, इन बेचारों के पास क्या है, ये किससे मांगे, ये किस चीज से अपने आप को मुतमईन करें, इनके पास तो कोई है ही नहीं सहारा। ये कहें, ये क्या कहेंगे कि किसकी तरफ से है, वो फिर ये देखेंगे हाँ ये हुआ तो वो हुआ, उसने ऐसे किया तो उसने वैसे किया, क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, इसी में घुलते जाएंगे। हमें तो ये पूछने की जरूरत नहीं क्यों हुआ, बस बेइज़्निल्लाह अल्लाह का इज़्ज़न यही था। तो हम कितने मुतमईन हो जाते हैं ये कह के, और ये कितने बेचैन रहते हैं, अगर ऐसा ना होता तो वैसा होता, वैसा ना होता वैसा होता, ये तो सारी उसकी बातें हैं जो शैतानी कलिमात हैं। अगर ये हो जाता तो वो हो जाता, अगर हम ऐसा कर लेते उस वक्त ना तो आज हमें ये घाटा ना होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मगर वाला कलमा है ना, शैतान का रास्ता खोलता है, क्योंकि होना तो वही है जो अल्लाह ने चाहना है। जो आप ट्रैप में आ जाते हैं शैतान के, और शैतान फिर आपको गमगीन करता रहता है, आपको डिप्रेस ही किए रखता है, क्योंकि वो आपको ये कहता रहता है अगर ये हो जाता, अगर ये हो जाता, अगर ये, अब वो तो होना था नहीं लेकिन उसने आपको इतना डिप्रेस किया कि वो आप ज़हनी मरीज़ी बन गए, या आप एक डिप्रेशन के मरीज़ बन गए, क्योंकि वो आपको कहता जा रहा है अगर ये होता। इस तरह से वो इंसान को गमगीन कर देता है, इस तरह से वो इंसान को अल्लाह से राज़ी नहीं होने देता, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी नहीं होने देता। तो जो इंसान मैं युमिन बिल्लाह ही, वो बड़ा खुशकिस्मत है जो अल्लाह पे ईमान रखता है। अब ये ऐसा ईमान नहीं है जैसे हमारे ईमान है, ईमान के तो हमारे मुंह से ही दावे हैं, क्या ईमान है जब ये ही नहीं यकीन कि जो भी आती है, कोई भी चाहे खुशी है या गम है, वो मेरे रब के इज़न से ही आई है। ना मैं खुशी में आपे से बाहर हो जाऊं, और ना मैं गम में ऐसे हो जाऊं कि बिल्कुल ही अपने आप को मरीज बना लूं। वो दोनों चीजों में एक्सट्रीम पे नहीं जाता, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, दोनों में एक्सट्रीम पे नहीं जाता, दोनों में वो एक बैलेंस्ड शख्सियत होता है इतदाल के साथ। क्योंकि खुशी भी मिलेगी तो वो कहेगा कि कौन सा मेरा अपना ऐसा कमाल है कि मैं आपे से बाहर हो रहा हूं, इतने में बड़बड़ के दावे कर रहा हूं और नाचने लग गए और आसमान सर पे उठा ले। नहीं, मेरे रब ने मुझे खुशी दी है। जैसे हमने सूरह हदीद में नहीं पढ़ा था, कितनी अच्छी बात थी ना वो। सूरह हदीद में हमने पढ़ा था, अल्लाह ताला ने फरमाया ना वहां पे आयत नंबर 22 में कि मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन कब्ल अन नबरअहा। ये जो तुम्हें पहुंचती है ना कोई भी मुसीबत, तो जमीन में या तुम्हारी जानों में, इससे पहले कि हम उसको पहुंचाएं, तुम्हारे ऊपर पैदा करें, उससे पहले वो एक किताब में लिखी हुई है। बेशक ये अल्लाह पे बड़ा आसान है। किस लिए? ताकि तुम उस चीज पे अफसोस ना करो जो तुम्हारे हाथ से जाती रहे, और ना ही उस चीज पर इतना इतराओ जो अल्लाह ने तुम्हें अता कर दी है। ना तो ऐसे अफसोस में चले जाओ कि हाय उसी के गम के अंदर तुम जिंदगी गुजार रहे हो, घुला रहे हो, ना ही खुशी के अंदर ऐसे आपे से बाहर हो जाओ कि भाई तकब्बुर के अंदर आ जाओ और इतराने लगो। ये मोमिन का काम नहीं, उसको पता है सब कुछ अल्लाह की तरफ से ही आ रहा है। तो फिर वो दोनों चीजों के अंदर ही एक्सट्रीम्स पे नहीं जाता, वो बीच में रहता है। ये नसीब ईमान वाले को मिलता है। फिर क्या होता है, जो ईमान वाला होता है ना, यहदी कल्बहू, उसका रब उसके दिल की रहनुमाई कर देता है, उसके दिल को सही ट्रैक पे रखता है, उसके दिल को थाम लेता है, उसके दिल को राजी कर देता है। वो कहता है अल्लाह जो तेरी तरफ से आया है मैं इस पे राजी हूं, इसमें कोई खैर ही होगी, चाहे मुझे नजर आए ना आए, मुझे इसकी मसलहत पता चले ना चले, अल्लाह मैं कोई शिकवा शिकायत नहीं करती। अल्लाहु अकबर। तो ये है एक मोमिन का किरदार, ये है कि जैसे एक मोमिन ईमान वाला हैंडल करता है जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स को। अब हम अपना मैच करके देख लें कि क्या हम कैसे करते हैं। कोई जिंदगी में खुशी आए तो हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर, और अल्लाह माफ करे कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, चाहे वो किसी किस्म की भी हो, उसके ऊपर हम कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या हम हर चीज को समझते हैं कि ये मेरे अल्लाह का इज़्ज़त था, बस मेरे अल्लाह की तरफ से है। और ईमान बिल्लाह का तो तकाजा ही ये है, रिक्वायरमेंट है कि इंसान ये यकीन रखे कि मैं जो भी मुझे चाहे किसी की तरफ से आ रहा है ना, उसने किया है, उसने किया है, फलानी ने मेरे साथ दुश्मनी की है, दुश्मनी उसने की होगी, वो उसका आप बेशक बदला ले सकते हैं। इस दुनिया के अंदर आपको कोई थप्पड़ मारता है, आप भी उसको एक थप्पड़ उसमें मार सकते हैं। किसी ने किसी को कत्ल किया, हाँ उसको सजा मिलेगी। ये नहीं है कि आप कहेंगे अल्लाह का इज़न है, बस छोड़ दो ठीक है अल्लाह का इज़न ऐसे ही था। नहीं, कानून दुनिया का अल्लाह ताला ने निज़ाम एक बनाया है, वो उसी तरह होगा कि उसको उसकी सजा दी जाएगी, क्योंकि उसने इरादा किया। लेकिन जो उसने कत्ल किया दूसरे को, तो अगर अल्लाह का इज़न ना होता वो कभी कत्ल नहीं कर सकता था। वो जो ट्रिगर उसने दबाया, उसकी गोली कहीं और जा सकती थी, उसका हाथ शल हो सकता था, वो गिर सकता था, वो बेहोश हो सकता था, वो कुछ भी हो जाता, लेकिन वो गोली इस बंदे को नहीं लगनी थी अगर अल्लाह का इज़न ना होता। अल्लाह का इज़न था तो वो लगी। इज़न का मतलब क्या है? ये नहीं कि अल्लाह उससे राजी है, बल्कि अल्लाह की इजाजत थी तो हुआ। ये ईमान। अब उस बंदे को सजा मिलेगी क्योंकि उसने इरादा किया, लेकिन ये याद रखें कि उसके साथ जब तक अल्लाह का इज़न ना मिलता वो कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इंसान फिर कितना बहादुर हो जाता है ना, वो किसी से भी नहीं डरता फिर। किसी से डर लगेगा फिर आपको कभी? हम कभी उससे डरते हैं, हाँ ये वो ऐसे ना कर दे, वो हमें ये ना नुकसान दे दे, वो फलाना ना मुझे ऐसे कर दे। क्यों क्यों डरते हैं? अल्लाह का इज़्ज़त ना हो, कोई नहीं कुछ कर सकता। जो आता है वो अल्लाह के इज़्ज़त से आता है। इसी तरह इंसान खुशी के लिए, कभी अपनी कामयाबी के लिए, कभी कोई चीज के लिए कितना दूसरों के पैरों में पड़ जाता है, किस तरह उनके आगे पीछे होता है, किस तरह लोगों की चापलूसियां करता है कि उनका गुलाम बन जाता है। ये बस मुझसे खुश हो जाए तो मुझे ये फायदा दे देंगे। क्यों? मा असाबा में मुसीबत, मुसीबत को दोनों सेंसेस में लेना। कोई पहुंचती नहीं है, कोई खुशी नहीं पहुंच सकती, कोई गम नहीं पहुंच सकता, इल्ला भी इतने ला अल्लाह के इज़्ज़त से ही पहुंचेगा। अगर वो आपको खुशी पहुंचाने का अल्लाह का इज़्ज़त हुआ कि ये आपको खुशी दे या ये आपके लिए कोई रास्ते बनाए, तो वो भी अल्लाह ही उसके दिल में डाल लेगा। आपके आगे पीछे होने से कुछ नहीं होगा। तो मोमिन का तो ये ईमान है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन। जो अल्लाह चाहे वही होगा, जो अल्लाह ना चाहे वो नहीं हो सकता। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में एक वाक्य आता है कि एक दफा वो जेल में गए तो उनको ये पता चला, जेल में इत्तला मिली कि उनकी एक बेटी बीमार हुई और फौत हो गई है। फिर दूसरी दफा जेल में गए तो पता चला दूसरी भी जवान बच्ची बीमार हुई है, बिस्तरे मर्ग पे है वो। तो उन्होंने एक नज़म लिखी वहां से, लंबी नज़म थी लेकिन उसका आखिरी जो शेर है वो ये है कि तेरी सेहत हमें मंजूर है मगर उसको मंजूर नहीं तो हमें भी मंजूर नहीं। तेरी सेहत हमें मंजूर है मगर उसको नहीं मंजूर तो हमें नहीं मंजूर, ये है शेर। यानी अगर रब को नहीं मंजूर तो हमें भी मंजूर नहीं है, हम तो उसी पे राजी हैं जो जिस पे हमारा रब राजी है। नहीं, इंसान अपना सर झुका दे फिर, तब फिर देखे ना, इंसान जब इस चीज के ऊपर आ जाता है ना कि मेरा रब जिस चीज में राजी है मैं भी उसी में राजी हूं, कितना मुतमईन हो जाता है उसका दिल। ईमान वाला खुशकिस्मत है ना, देखो ना उसको गम ऐसे चाटते हैं जैसे और दुनिया के लोगों को, उनको तो जरा जरा से सदमे लेके ही बैठ जाते हैं, कहते हैं अब तो कमर ही टूट गई, अब तो उठ ही नहीं सकते कभी, क्योंकि अल्लाह पे ईमान नहीं। ईमान में कमजोरी है। जिसका अल्लाह पे ईमान हो वो उस पे राजी होता है, वो उसको अल्लाह से मोहब्बत है ना, वो कहता है मेरा रब जिस चीज पे राजी मैं भी उस पे राजी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था किस पे राजी हुए थे? बहुत दफा आपको वाक्या सुना है ना, मेरा अल्लाह अगर मुझे जलाने पे राजी है तो मैं जलने पे राजी। तो ये तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुराने पाक में सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह आजमाएगा तुम्हें, जरूर आजमाएगा दुश्मन के डर से, भूख से, प्यास से, माल जान की कमी से, फलों की कमी से। फिर खुशखबरी दे दो, अब बशीर सबरीन अल्लदीना इज़ा असाबत हुम मुसीबतुन कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन सबर करने वालों को खुशखबरी दो कि जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है ना, वो कहते हैं हम तो अल्लाह के ही तो हैं, हम अल्लाह की मिल्कियत है, हमें उसकी तरफ वापस जाना है। वो ये कहते हैं अल्लाह ने आजमाना है, तुम्हारी आजमाई जरूर होगी इस दुनिया में, अल्लाह तुम्हें टेस्ट जरूर करेगा, कभी खुशी दे के करेगा, कभी गम दे के करेगा। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत व लम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम। क्या तुमने ये समझा हुआ कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे और तुम्हारे ऊपर अभी तो कुछ वो हालात आए ही नहीं जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे? क्या आया था उनके ऊपर? मस्सतहुमुल बासाउ, उनको बीमारियां आई, वह दर्राउ, और मुसीबतें पहुंची, वह जुलजिलू, हत्ता कि वो झंझोड़ दिए गए, हत्ता यकूल अर रसूल वल्लदीन आमनु माहू मता नसरुल्ला, हत्ता के रसूल कहने लगे, ईमान वाले कहने लगे, जो उन रसूलों के साथ होते थे वो ईमान वाले भी कहने लगे मता नसरुल्ला, अल्लाह की मदद कब आएगी, कब आएगी अल्लाह की मदद। इतनी ज्यादा उनके ऊपर मुश्किलें आई, कई बीमारियां, कई मुसीबतें, कई इतने हिला दिए गए। तो तुम कहते हो कि तुम्हें बैठे बिठाए ही ऐसे ही जन्नत मिल जाए, ठंडी ठंडी मिल जाए, ऐसे नहीं होता, जन्नत का रास्ता आसान नहीं है, मुश्किलें आएंगी। अल्लाह कभी तुम्हें दे के आजमाएगा, कभी ले के आजमाएगा, कभी खुशियां आएंगी, कभी गम आएंगे। ना खुशी में आपे से बाहर हो जाना और अपना ही कमाल समझ लेना इसको, और ना ही गम के अंदर ऐसा रोना, ऐसी दुहाई देना कि अल्लाह से गिले शिकवे और मायूस हो जाना। तो अल्लाह ताला ने हमें कितनी प्यारी बात सिखाई है, कितनी प्यारी बात सिखाई है कि जो अल्लाह पे ईमान रखता है अल्लाह उसके कल्ब को थाम लेता है। इसीलिए कहते हैं ऐसे हो जाओ जैसे मैयत गुसल देने के वाले के हाथ में होती है। देखा है आपने मैयत को, बॉडी को देखा है, जब वो गुसल देने वाला उसको जिधर को मर्जी मोड़े, जिधर को मर्जी तोड़े, जो मर्जी करे, वो मैयत है। उसने ना बोलना है, ना कुछ उसने एक्शन लेना है, ना उसने कोई बुरा मानना है, ना उसने कोई कुछ भी नहीं, कोई इजहार है ही नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। इस तरह हो जाओ अल्लाह के हाथों में, कोई रेजिस्टेंस नहीं, अल्लाह जैसे तूने चाहा, अल्लाह जैसे आपकी रजा। अल्लाह हमें ऐसा ईमान दे दे, अल्लाह हमें ऐसा ईमान दे दे। हम तो ये छोटे छोटे, एक कांटा भी चुभता है तो हम दुहाइयां देने लगते हैं। वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम। ये ना समझना अल्लाह को पता नहीं है, जो तुम्हारे दिल पे गुजरती है, जो एहसासात तुम्हारे होते हैं, सब कुछ अल्लाह जानता है। जो नेगेटिव रिएक्शंस होते हैं, या जो तुम अल्लाह ताला के ऊपर फिर भी तवक्कल करके और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह ने इम्तिहान डाला, कोई भी मुसीबत तुमको पहुंची, तुमने उसमें क्या किया, उसको हर चीज का इल्म है। सुभान अल्लाह। फिर जो अल्लाह पर ईमान रखने वाला है वो तो हर हाल में ही मुतमईन रहेगा भाई, वो तो अच्छा रह गया ना, उसकी तो मदद अल्लाह फरमाते हैं, उसके कल्ब को खुद ही इत्मीनान दे देते हैं, उसको हिदायत खुद ही मिल जाती है इस मौके पे, मुझे क्या करना है, कैसे चलना है, उसको कुव्वत आ जाती है उसके लिए चीजों को सहना या उनको बर्दाश्त करना, चाहे वो खुशी हो चाहे गम हो, आसान हो जाता है। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।